जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है तैशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विद्या सागर मुनि महाराज की। मैंने एक कहानी सुनी, अच्छी कहानी है, आपको सुनाता हूं। एक बार एक रोड के किनारे एक भिखारी भीख मांगा करता था। लोग निकलते थे, दया करते थे, दो चार पैसे देते हुए आगे बढ़ जाते थे। रोज यही सिलसिला चलता रहा। भिखारी पूरी जिंदगी भीख मांगता रहा और भीख मांगने वाले को कितने पैसे जुड़ेंगे, खाने लायक पैसे जुड़ जाते थे तो खा पी लेता था। वो भिखारी हमेशा सबके सामने हाथ ही फैलाता रहा। कभी चार पैसे आने के बाद भी उसने ये नहीं सोचा कि अब तो मेरे पास चार पैसे हैं, कल भीख ना मांगू। नहीं, जब एक बार भीख मांगने की आदत शुरू हो जाती है तो फिर कितना भी क्यों ना आ जाए आदत जाती नहीं। मांगता था, पूरी जिंदगी निकल गई। और एक दिन ऐसा हुआ कि भिखारी नहीं रहा। सबके साथ यही होता है, खूब कोशिश करते हैं कि रहेंगे और ज्यादा रहेंगे, पर कहां रह पाते हैं। थोड़े दिन के बाद सबको जाना पड़ता, भिखारी भी चला गया। आते जाते लोगों ने देखा कि लगता है भिखारी शांत हो गया। अब लाश कहां पकड़ी रहेगी, ठिकाने लगा दो। तो लोगों ने लाश भी ठिकाने लगा दी। लेकिन इतने दिन से जो कि भिखारी उसी जगह रहा करता था तो जरा जगह भी गंदी हो गई थी। लोगों ने कहा कि क्यों ना ये सब टीन टप्पर हटा करके जरा साफ सफाई कर दी जाए। तो उन्होंने साफ सफाई करी। एक युवक भी था उसमें, तो उसने देखा कि जगह बहुत ज्यादा गंदी हो गई, वो जगह भी थोड़ी सी क्यों ना उखाड़ दी जाए वहां से, एक आध फिट उस मलबे को भी बाहर कर दिया जाए। तो जिस जगह वो भिखारी बैठता था उस जगह जब जरा सा खोदा गया, सोने की असरफियां निकलना शुरू हो गई। जिस जगह एक एक दाने के लिए भीख मांगता रहा उसी जगह नीचे सोने की असरफियां थी, पर मालूम नहीं था। हमारी अपनी आत्मा की शक्ति भी हमें कहां मालूम है। ऐसी हमारे भीतर भी अनंत शक्ति विराजी हुई है, बैठी हुई है, लेकिन एक एक इंद्रिय के विषयों के लिए सिवाय भीख मांगने के हम करते क्या है। हम भूल गए हैं, अपनी ऊर्जा को भूल गए, अपनी आत्म शक्ति को भूल गए हैं। और जो पर पदार्थ है उन पदार्थों की निरंतर आकांक्षा और इच्छा करते रहते हैं। तपस्या हमारे भीतर बैठी हुई अनंत शक्ति को उद्घाटित करने की प्रोसीजर है, पर कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि भिखारीपना हमें अपना छोड़ना पड़ेगा, और जो हमारे भीतर सम्राट बैठा हुआ है उसे सेंस करना पड़ेगा, उसे याद करना पड़ेगा। जब तक व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास पैदा नहीं होता तब तक व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाता। और आत्मविश्वास कब पैदा होता है? जबकि हमारे भीतर जो अनंत शक्ति है उस शक्ति के प्रति हमें थोड़ा सा कोई आइडिया, कोई थोड़ा सा हमें इशारा मिले। वो इशारा कैसे मिलेगा? जिन्होंने तपस्या की है उनके चरणों में हम जाकर के बैठेंगे तब इशारा मिलेगा। कितनी बातें हो गई। जिनने तपस्या करी उनके चरणों में जाकर के बैठे। हमारे अपने भीतर भी वैसी ही शक्ति है, इस बात का हम एहसास करें और फिर उसके बाद हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ना शुरू होगा। तो कोई ज्यादा कठिन चीज नहीं है कि हम तप के द्वारा अपनी अनंत शक्ति को उद्घाटित कर लें। जैसे एक कलाकार होता है, हमें तो नहीं दिखता कि ये पत्थर है और इस पत्थर के भीतर कोई भगवान हो सकता है, लेकिन कलाकार को दिखाई पड़ जाता है कि इसके भीतर, इस पत्थर के भीतर जो कि अंदर है, इसके भीतर भी कोई बहुत प्यारी सी भगवान की प्रतिमा निकल सकती है। ऐसी तो हमारे भीतर भी है, लेकिन हमें एक कलाकार की आंख तो चाहिए ताकि हम उसमें जो अतिरिक्त है वो हटा दें। कलाकार करता क्या है? एक व्यक्ति खड़े खड़े देखता रहा कि सुनते हैं कि बड़ी अच्छी मूर्ति बनाता है, तो मूर्ति क्या बना रहा था? वो तो चैनी चला रहा था और टुकड़े टुकड़े करता चला जा रहा था। बड़ा अचरज में पड़ा सुबह से शाम तक कि किया क्या है इसने, सिवाय टुकड़े टुकड़े उसके तोड़ने की, और क्या किया? लेकिन तोड़ा क्या है? जो अनावश्यक था उसे हटाया है। तराशना, अपने जीवन को तराशने की प्रक्रिया है तप। कुछ इस तरह से तराशना कि जीवन का जो वेस्ट है, जीवन का जो अतिरिक्त हमारे साथ जुड़ गया है वो हट जाए और हमारा जो ओरिजिनल वो हमें प्राप्त हो जाए। इसका नाम तपस्या है। इच्छाओं का निरोध करने का नाम तप कहा गया। तप तीन तरह का होता है, वाणी का तप भी होता है, मन का तप भी होता है और शरीर का भी तप होता है। तीनों तप होते हैं और भी गीता में तीन तरह के तप कहे गए। एक तामसिक तप है, एक राजसिक तप है और एक सात्विक तप है। लेकिन अच्छा है सात्विक तप। राजसिक तप में व्यक्ति अहंकार पूर्वक तप करता है और तामसिक तप में अपने मन को अच्छा लगने वाला तप करता है, जिससे कि मन को शांति मिलती है, जिसमें मैसोसिस्ट और सैडिज्म ये जो दो प्रोसीजर होते हैं साइकोलॉजी में वो भी चलते हैं। अपने को पीड़ा देने में जिसको आनंद आने लगता है तो फिर वो अपने को हंटर मारता है और लोगों को उसके हंटर मारना देख करके आश्चर्य होता है, तो उसको बड़ा हर्ष होता है कि देखा चार लोगों का ध्यान मेरी तरफ जा रहा है। ये तामसिक तप है। कांटों पर सो जाता है, बहुत शाही जलूस निकलेगा अगर 10 उपास कर लूंगा, वो कर लेता है। तो सब जो है राज तामसिक तप है। और 10 दिन के बाद वो अपनी कोई प्रशंसा तो नहीं चाहता, लेकिन जबकि कोई मिलता है तो उससे कहता है तो मैं नहीं मालूम क्या समझ रखा है, जरा ठीक से उधर बैठो दूर मेरे से, 10 दिन का तप किया। ये अहंकार पूर्वक तप करता है, ये राजसिक तप है। वो कहता जरा ऊंचा आसन लाओ, मैं जरा तुमसे ऊंचा बैठूंगा क्योंकि मैं तपस्वी हूं। ये तप अच्छे तप नहीं है। सात्विक तप अहोभाव से किया जाता है कि आज इस शरीर में शक्ति तो नहीं है पर आत्मा की शक्ति को जागृत करने का मन बना है, सहारा देना, आज तप में उतरता हूं आपकी कृपा बनी रहे, ऐसा किसी के प्रति समर्पित होकर के किया जाने वाला तप और अत्यंत आनंद के साथ किए जाने वाला तप वो सात्विक तप है, जिसमें वाणी की विनम्रता का नाम वाणी का तप है, शरीर की मृदुता का नाम शरीर का तप है और विचारों की निर्मलता का नाम मन का तप है। जिसको गाली दे देने के बाद भी जो अपने मन को बिगाड़ता नहीं है, अपने भाव नहीं बिगाड़ता, वो करता है मन का तप। जो कठिन वचन सुन करके भी रिप्लाई में कठिन वचन नहीं बोलता है, वो करता है वाणी का तप। जो शरीर पर आने वाली हर विपत्ति को सहज और शांत भाव से सहन कर लेता है, वो करता है शरीर का तप। ऐसे तप तीनों अपन आसानी से कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। 12 प्रकार के तप आचार्य भगवंतों ने कहे हैं, जो कि पूरी तरह से करें तो मुनि लोग कर सकते हैं पर श्रावक करें तो आंशिक रूप से कर सकते हैं। लेकिन तप के लिए बहुत आवश्यक है कि हम डिवोट होकर के करें, हम समर्पित होकर के करें। बड़ी ताकत है समर्पण में, बड़ी आत्मशक्ति पैदा हो जाती है। जिस आत्मशक्ति को पैदा करने के लिए तप करते हैं उस तप करने के लिए भी एक आत्मशक्ति चाहिए। जिस आत्मशक्ति को पैदा करने के लिए तप करना है उस तप करने के लिए भी एक आत्मशक्ति कहां से मिलती है? वो समर्पण से मिलती है। एक शिष्य था अपने गुरु का, तो गुरु से बहुत दूर रहा करता था लेकिन वो गुरु को बहुत मानता था। कभी मौका आ जाए तो आकाश में उड़ जाता था, लोग अचरज में पड़ते थे कि बड़ा तपस्वी है। कभी मौका आ जाए तो पानी तो चल लेता था, लोग बड़े अचरज में पड़ते थे, कहते थे तू बड़ा तपस्वी है। वो कहता था कि इसमें क्या है, ये तो गुरु का आशीर्वाद है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, इसमें काहे की तपस्या है। वो तो पक्षी भी उड़ लेता है आकाश में, वो तो मछली भी तैर लेती पानी में, इसमें कौन सी बात, मौका आया था मैंने ऐसा कर लिया। लेकिन लोग उसे बहुत तपस्वी मानते थे और ईर्ष्या भी करते थे। जितने भी और उसके आसपास शिष्य थे वो सब ईर्ष्या करते। एक बार आश्रम में ऐसा हुआ कि आग लग गई। आग लगी तो सबको थोड़ी सी ईर्ष्या बस और उसको चढ़ा दिया। बोले तेरी अगर सच्ची श्रद्धा है अपने गुरु पर तो बैठा रहा यहीं पर, देखें कि तू जलता है कि नहीं। उसने कहा अगर गुरु की श्रद्धा का सवाल है तब तो कोई बात नहीं, तो इसमें कौन सी कठिन बात है, बैठ गया। वो आग लगी, पूरे महल में पूरे आश्रम में आग लगी और पूरे आश्रम का सामान जल गया। लेकिन लोगों ने जब भीतर जाके देखा तो उसके कपड़े तक नहीं जले थे, वो तो जलना बहुत दूर की बात है। वो बैठा हुआ था बिल्कुल शांत, मुस्कुरा रहा था। अब तो बात जो है धीरे 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 कानों कान वो गुरु के पास तक पहुंच गई। गुरु को भी एक बार आश्चर्य हुआ कि मेरा शिष्य इतना तपस्वी हो गया। तो गुरु आए देखने के लिए और उससे कहा कि सुनते हैं तू बड़ा तपस्वी हो गया है, ऐसा ऐसा हुआ, क्या सच है? उसने कहा आपकी कृपा, मुझे क्या मालूम। तो गुरु ने कहा कि तू मेरे सामने पानी पे चल सकता है? उसने कहा होता कौन है पानी पे चलने वाला, आपकी कृपा होगी तो हो जाएगा, तो चल मुझे दिखा पानी पर चल करके दिखा। गया वो नदी के किनारे और गुरु ने कहा कि तू चल के दिखा पानी पर। तो उसने अपने गुरु का स्मरण किया, अपने को गुरु के चरणों में छोड़ा और पहला कदम रखा तो रखते ही चला गया, बहुत दूर तक निकल गया पानी पर। गुरु ने कहा लौटा वापिस, तो लौट आया। बड़ा आश्चर्य हुआ, पीठ थपथपाई उसने शिष्य की, तू तो बहुत होशियार हो गया। लेकिन भीतर भीतर गुरु के जरा सा अहंकार आ गया, जरा सा अहंकार आ गया कि मेरा शिष्य मेरा नाम लेकर के ऐसा करता है तो फिर तो मैं तो कह ही सकता हूं। किसी का नाम लेके करने वाला आगे बढ़ जाता है, लेकिन श्रद्धा बहुत जरूरी है। और गुरु जी ने जैसे ही जो है अहंकार वश और पहला पैर आगे बढ़ाया और डूबने लगे जब, तो शिष्य ने धीरे से हाथ बढ़ा करके गुरु का ही नाम लेके गुरु का हाथ बढ़ा करके ऊपर खड़ा कर दिया। बोले गुरु जी मुझे तो आपके ऊपर विश्वास है लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं। मेरा विश्वास आपके ऊपर है जो मुझे शक्ति देता है, लेकिन आपका अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है कि आपके नाम में, और आप अपनी ही परीक्षा करना शुरू कर दिया आपने। नहीं, आत्मविश्वास तब आता है जब हम किसी पर विश्वास कर पाते हैं। इसलिए तपस्या अगर करनी हो तो विश्वास पूर्वक तपस्या करें, श्रद्धा पूर्वक। सच्चे देव गुरु शास्त्र जिन्होंने तपस्या करके अपने जीवन की अनंत ऊर्जा को उद्घाटित किया है, उनके चरणों में बैठ करके तप की शुरुआत करनी चाहिए। तप के बिना जिंदगी अधूरी मानी जाए। चार आराधना में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, ये चतुर्विध आराधना कहलाती है। एक मुनि जब हमको दीक्षा दी गई तब पाचार्य ने कहा था कि कोई तप अंगीकार करो, रत्नत्रय तो अंगीकार करवा दिया जाएगा लेकिन जीवन पर्यंत के लिए कोई तप भी अंगीकार करो। 12 प्रकार के तपों में से एक तप दीक्षा के साथ ही अंगीकार करना पड़ेगा ताकि चार प्रकार की आराधना के द्वारा हम अपने जीवन को विशुद्ध बना सके। 12 प्रकार के तपों के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं ताकि आप अपने जीवन में तप से डरे ना। तप डरने की चीज नहीं है, तप करने की चीज है। व्यूल नका संयम धरा, शांति सागर जी महाराज हमेशा लोगों से कहा करते थे कि डरो मत, संयम धारण करो, तपस्या में उतरो तो थोड़ा थोड़ा करके देखो। मैंने कल आपसे बात की थी कि इंद्री का नियमन कर लेना संयम है, लेकिन इंद्री का निरोध कर देना इसका नाम तप है। इंद्रियों का निरोध करते हैं। कैसे? बहुत आसान सी चीज है। आज मन करता है कि शक्कर खाऊं, कोई बात नहीं, कितनी खाऊंगा ये तो लिमिट करूंगा, ये संयम हो जाएगा। लेकिन आज मन करता है कि शक्कर खाऊं तो अपने मन पर जरा निरोध करना पड़ेगा, नहीं खाऊं तो चल तो जाएगा, लेकिन जरा दिक्कत होगी, हो जाने दो, देखेंगे शाम तक। तो आज कल मैंने एक चम्मच शक्कर खाई थी, हो सकता था 10 खा सकता था, लेकिन एक ही चम्मच शक्कर खाई थी, आज तो वो भी ना खाऊंगा, हो गया तब। कल थोड़ा संयम धारण किया था, 10 की जगह 1 पर आए थे, और आज वो 1 भी अपने जीवन से अलग कर दी। एक छोटी सी चीज को अपने से अलग करके देखें क्या होता है इसके नहीं ग्रहण करने से। जो बाह्य पर पदार्थ है जो हम ग्रहण करते हैं निरंतर, उनसे अपने को बचाते चले जाना, उनसे अपने को हटाते चले जाना, यही तो जीतना है अपने आप। उपवास, अपने समीप बैठ करके देखना, थोड़ी देर के लिए अपने निकट बैठ के देखना, रोटी के निकट नहीं जाना, भोजन के निकट नहीं जाना, इसका नाम उपवास है। उपवास, अपने समीप बैठना, जितनी देर बने उतनी देर बैठो ना, किसने कहा 12 घंटे बैठो, 6 घंटे बैठ के देखो अपने निकट, और कहीं नहीं जाना। मन चला जाएगा, हो सकता है कि 11 बज गए, भूख लगाई, हाँ ठीक है अभी नहीं, अभी तो अपने पास ही आनंद आ रहा है, अपने पास बैठेंगे। आप इस तरह आसानी से कर सकते हैं अपने पास बैठने का नाम। आज तो जाऊंगा भी चौके में जाऊंगा तो, लेकिन थोड़ा सा ग्रहण करूंगा, मन तो करेगा कि बहुत सारा खा लूं, लेकिन आज थोड़ा आधे ही खा करके आ जाऊंगा। उनोदर नाम का तप हो गया, आधे पेट भोजन किया, चले आए चुपचाप। वृत्ति परिसंख्यान, जो कि एक साधु को रोज देना होता है, ना भी ले तो कोई जरूरी नहीं, तप है पर ले तो बहुत अच्छा है। वृत्ति परिसंख्यान, अपनी वृत्ति का लिमिटेशन कर देना। वृत्ति तो करना है, भोजन के लिए तो जाना है, लेकिन कहां जाऊंगा, राग द्वेष हो जाएगा, असंतोष हो सकता है, मन कर सकता है कि इनके यहां जाऊं इनके यहां ना जाऊं, लेकिन मन से पूछना कि इनके यहां क्यों नहीं जाना, इनके यहां क्यों जाना, इनने क्या बिगाड़ा कि इनके यहां नहीं जाऊं, गड़बड़ है, ये तो राग द्वेष वाला काम है। तो क्या करो, भगवान के सम्मुख तय कर लो कि आज तो ऐसा ऐसा होगा तो जाऊंगा। मोहल्ले की वृत्ति कर लेना, आज तो अपने दाएं तरफ जाऊंगा पहले, फिर उसके बाद देखूंगा, बाएं तरफ अभी नहीं जाऊंगा, आज तो जो है 4 चौके छोड़ करके 5वें में जाऊंगा, अगर नहीं होगा तो लौट आऊंगा वापस। ये मोहल्ले की वृत्ति हो गई। 4 लोग खड़े होंगे तो चले जाऊंगा, 5 होंगे तो ना जाऊंगा, 5 खड़े होंगे तो चले जाऊंगा, 6 होंगे तो ना जाऊंगा, ये दाता की वृत्ति हो गई। भीतर तो चले जाऊंगा लेकिन देखूंगा कि चांदी के बर्तन में रखा होगा, कुछ तो ले लूंगा बाकी नहीं दूंगा, ये पात्र की वृत्ति हो गई। ये कुछ भी नहीं करूंगा मैं तो, चुपचाप चले जाऊंगा, 1000 चीजें भी बताएंगे पर 4-5 चीजें लेके आ जाऊंगा, भोजन की वृत्ति हो गई। बड़ा आसान है, इस तरह हम तब कर सकते हैं। आपके सामने परोस दी गई हैं, 10 सब्जियां परोस दी गई हैं और हो सकता 5 प्रकार के और दूसरे आइटम परोस दिए गए, भाई ये इतना नहीं दूंगा मैं, ये 2 चीजें रख दीजिए, ये अलग कर दीजिए, सब अलग कर दीजिए, अब इतने आज आनंद है अपने में। ये वृत्ति परिसंख्यान आप तब कर सकते हैं इतने आसानी से। रस परित्याग, 6 रस कौन खाता है रोज, आज तो सुबह से तय कर लिया है कि ये 2 रस नहीं खाऊंगा, अब हो सकता है कि वो आइटम आ जाए, आपने दूध का त्याग किया और उन्हें रख दिया सामने 6, मन कर रहा है कि बड़ी अच्छी चीज है और हमने तो सोचा नहीं था, लेकिन ये आ गई तो नहीं खाएंगे फिर। आज रसगुल्ला रख दिया लेकिन हमारा दूध का त्याग है इसलिए कोई आइटम नहीं खाऊंगा जो दूध से बना हुआ। तो ये वृत्ति बढ़, ये रस परित्याग बड़े आसानी से किया जा सकता है। ऐसी छोटी छोटी सी विविध सैयासन, एकांत में बैठना और सोना, दोनों चीजें, बड़ा डर लगता है अकेले में सोना, बहुत डर का काम है। ये ऐसा तप नहीं कर पाते हैं तो इतना तो कर सकते हैं कि कोई दुख आए तो उस समय किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है, मुझे ही अपनी पीड़ा सहना पड़ेगी, दूसरा थोड़ी बांट सकता है, दुख में अकेला हूं सुख में भी अकेला हूं, सुख और दुख सब में मैं अकेला हूं, कैसा विचार नहीं कर सकते थोड़ी देर के लिए, कोई तो नहीं बांट पाता है। माँ अपने बेटे की पीड़ा में रो रो कर अपने प्राण दे दे तो दे सकती है, लेकिन अपने बेटे की पीड़ा को जरा सा कम नहीं कर सकती, एक रक्ति कम नहीं कर सकती, प्राण दे दे तो दे दे। जब ऐसा ये संसार है तो फिर मैं विविक्त अकेला ही हूं, अकेला आया हूं, अकेला चला जाऊंगा, थोड़ी देर बर्दाश्त तो करो, काहे को 17 लोगों को बुला रहा हूं, काहे को शिकायत कर रहा हूं कि कोई मेरी सेवा नहीं कर देता है, और ये काय के लिए लड़के और हमारे काय के लिए बहू कजू काम के नहीं, ऐसा विचार नहीं करेगा, मैं अकेला ही था, चुपचाप लेटे रहो, शांत भाव से देखो, तप हो जाएगा। कायोत्सर्ग, काय क्लेश, बाह्यम तपा, काय क्लेश, शरीर निरंतर मुझे पीड़ा में डाल देने वाला है, इस पर अब कोई पीड़ा आएगी तो उसे दूर नहीं करूंगा, चुपचाप सहन करूंगा, काय क्लेश। शरीर तो वैसे ही कष्ट देता है मेरे लिए, कभी उसमें सुख पहुंचा ही नहीं। मैंने बहुत कोशिश करी इससे सुख मिलेगा, लेकिन हमेशा दुख देता है। अब मैं कोई इससे सुख की आकांक्षा नहीं करूंगा, शरीर पाने वाली हर विपत्ति को सहज और शांत भाव से सहन कर दूंगा। हो जाए विनय बैयाव्रत शांत है विस्तर और ध्यान छह अंतरंग तप है। वाही तप का सिर्फ आशय इतना है कि बाहर में लोगों को दिख जाते हैं, अंतरंग तप का आशय है कि बाहर में और कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता, सम्यक दृष्टि के ही होंगे। अंतरंग तप वाही तप तो कोई और भी कर सकता है। विनय रत्नत्रय की विनय करना, जहां रत्नत्रयधारी दिख जाए, जहां कोई श्रद्धालु दिख जाए, जहां कोई ज्ञानवान चारित्रवान दिख जाए, विनय से चित्त भर जाना। जहां कोई अपने से अपराध हो जाए वहां पर तुरंत कन्फेस करने के लिए तैयार हो जाना बड़ी से बड़ी तपस्या है। गलतियां करना तो बहुत सहज है, स्वाभाविक है, लेकिन कन्फेस, टू कन्फेस इज डिवाइन, टू एरर इज ह्यूमन। गलती कर लेना तो मानव का स्वभाव है, लेकिन कन्फेस करना तपस्या है, देवत्व है। तो हम तुरंत भूल अपनी स्वीकार कर लेंगे, प्रायश्चित ग्रहण कर लेंगे। विनय प्रायश्चित बैयाव्रत, कोई मोक्ष मार्ग पर चलने वाला हो, उसे किसी चीज की आवश्यकता हो, फौरन तैयार खड़े हुए, पैर दबा दूं क्या? पैर की दबाने की आवश्यकता नहीं है, तो आज्ञानुवर्ती, आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगा, आपको जिसमें अच्छा लगे वैसा करूंगा, ये बैयाव्रत्ति। फिर स्वाध्याय, निरंतर अपने आत्मा का विचार करना कि काहे के लिए पैदा हुआ था, काहे के लिए यहां पर आया था, सिर्फ खाने पीने और मर जाने के लिए? नहीं, खाने पीने मर जाने के लिए थोड़ी आया था, मैं तो मरण को जीतने के लिए आया था, मैं तो जन्म को जीतने के लिए आया था। तो ऐसा कोई प्रोसीजर क्यों ना करूं कि मेरा जन्म फिर से ना हो, मेरा मरण फिर से ना। ऐसा निरंतर विचार करना, अपने आत्मा का बहुत निकट से अध्ययन करना, ये स्वाध्याय। मैंने शायद आपको कभी स्वाध्याय के पांच भेद बताया, फिर से याद कराए देता हूं, आप भूल जाते होंगे शायद, मैं सोचता हूं। पढ़ना, अपने जीवन को पढ़ना, वाचना, पहला स्वाध्याय वाचना, फिर प्रचना, फिर अनुपेक्षा, फिर आमनाएं, फिर धर्मोपदेश। पांच प्रकार से स्वाध्याय किया जा सकता। पढ़ना, किताब पढ़ना भी पढ़ना है, वो भी स्वाध्याय है, लेकिन किताब पढ़ करके अपने जीवन को पढ़ना कि सुबह से शाम तक देखो तो गुस्सा यहाँ नहीं भी करते तो भी तो चल जाता, और देखो यहाँ पर झूठ नहीं बोलते तो भी चल जाता, काहे को बेकार में झूठ बोली नाहक और बेकार में गुस्सा करा, शाम को ऐसा विचार कर लिया, अपने जीवन को पढ़ लिया। क्योंकि यही तो लिखा था कि राग द्वेष नहीं करना, कषाय नहीं करना, तो मैं वही तो पढ़ रहा हूं, अपने जीवन में पढ़ रहा हूं। फिर पूछना, पूछना अपने आप से कि क्यों करते हो यार तुम ऐसा, दूसरे से तो पूछ लेते हैं, अपने से पूछना, अपना कान पकड़ करके अपने से पूछना क्यों करते हो ऐसा, ऐसा करना चाहिए तुम्हें, अपने से पूछना, प्रश्न। अनुप्रेक्षा, अब ध्यान रखना, अब ऐसा नहीं करेंगे, बार बार इस बात का विचार करूंगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे करना क्या चाहिए, मुझे बारह भावनाओं का चिंतन करना चाहिए और मुझे पाप नहीं करना चाहिए। आमनाएं, निरंतर इस बात के लिए घूंघते रहना, मुझे ऐसा नहीं करना है, जैसे ही कोई क्रोध दिलाने लगे फौरन जोर से बोल देना मुझे क्रोध नहीं करना है, मुझे सावधान रहना है, मुझे क्रोध नहीं करना है, मुझे स्मरण है इस बात का, क्योंकि मैं क्रोध करके अपने जीवन का पतन कर चुका हूं, अब मुझे क्रोध नहीं करना है। जैसे झूठ बोलने का मौका है जोर से मुंह से निकल जाए, भगवान मेरे से झूठ मत बुलवाना, मौका है बिल्कुल झूठ बोल सकता हूं, नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, बार बार ऐसा आमना है, ये कहलाती आमना है। निरंतर जो हमने अध्ययन किया है, जो हमने तय किया है, उसको बार बार घोकना और धर्मोपदेश, इसके बावजूद भी समझाना अपने को, जब कभी चूक जाए तो अपने हाथ से अपने को उपदेश देना कि देखो क्या मतलब है इन सब चीजों को करने से, अपने आत्मा का पतन क्यों करते हो, ये धर्मोपदेश। ऐसा स्वाध्याय बहुत आसान है, दुकान पर, मकान में, बाजार में, जहां आते जाते हर समय आप कर सकते हैं, इतनी आसान सी प्रक्रिया। आपने तब को तो ऐसा मान रखा है कि महाराज जी के जुम्मे हैं, बे सब कछु करें, हमें पकन नहीं जबरी उजाई के जुम्मे, महाराज जी को उदाहरण की महाराज जी यही हरों के हैं, तपस्या के कौन, श्रावक के ही नहीं है तपस्या के उदाहरण, श्रावक भी तप कर सकता है, चक्रवर्ती 96,000 रानियों के बीच में भी सामायिक कर लेता था और स्मशान में अश्विनी चतुर्दशी को जाकर के भी ध्यान लगा लेता था, क्या वो श्रावक नहीं था? था, शक्तिशाली था, महापुरुष था, ठीक है भैया, तो उसका एक अंश तो हम कर सकते हैं, हम एक श्रावक की हैसियत से हम तब चाहें तो बहुत आसानी से कर सकते। विसर्ग, थोड़ी देर के लिए अपने शरीर से ममत्व छोड़ना, कहाँ छोड़ सकते, पूजा करे तो शरीर से ममत्व छूट जाता है, लेकिन पूजा ही छोड़ दी, घंटे भर तक पूजा में लीन रहिएगा, कहाँ ख्याल रहता है कि शरीर कहाँ पड़ा हुआ है, कैसा पड़ा हुआ है, कपड़े कैसे हो गए हैं, जैसे चाहे जैसे रहे हैं, वो तो लीन है अपने भजन पूजन कर रहे हैं, कई लोग इसमें लीन होकर के अपने शरीर से। विसर्ग, शरीर का उतनी देर के लिए ममत्व छोड़ देना, जितनी देर भगवान का स्मरण करते हैं उतनी देर अपने शरीर के ममत्व को छोड़ देना और भगवान का स्मरण करना, विसर्ग और ध्यान, धर्म ध्यान करना बहुत आसान है, कठिन नहीं है। एक पूजा विस्तारी थी, सोची थी कि बस एक पूजा कर हो चले गए, उतने में दूसरे जने आ गए, कह लग जा और कर दो। अब पूजा कर दो शुरू कर दी और पैर में होने लगी तकड़ी, तो दो विचार आ सकते एक साथ कि कहां से कहां जी आ गए, जी ने आते तो अब वहीं चले जाते वापस, तो जो तकलीफ न होती अब जी और आ गए। तो ऐसे आठ ध्यान पूर्वक पूजा कर सकते और उसी समय ये विचार कर सकते कि अच्छो बहुत जी आ गए, से एक पूजा और विस्तार ली, थोड़ी तकलीफ भाई सो अच्छो है, असाता कर्म की निर्जरा हो रही, निकल जान दो अभी निपटो जाते साथ, चुपता भाव जासो आगे को न हुई। ऐसा विचार करके एक पूजा और कर ली आनंद के साथ में, तो धर्म ध्यान हो गया। वही आर्थ ध्यान है, वहीं पर धर्म ध्यान क्षण भर के अंदर विचारों को बदल दिया। विचारों को खराब नहीं होने देना है, मन का, मन की पवित्रता बनी रहे तो मन के द्वारा होने वाला तप उसी समय संभव है। निद्रा के लिए ही तप किया जाता भैया, कर्मों का हिसाब लेन देन जिंदगी का पड़ा है, कब चुकाइएगा? एक ना एक दिन तो चुकानी पड़ेगा। एक मुनि महाराज जी के बारे में आता है कि वो ध्यान करते थे, तपस्या करते थे वन में, शांत भाव से खड़े हुए थे, एक ग्वाला वहां आया। सबने सुनी होगी कहानी, फिर से सुनो। ग्वाला आया, बहुत सारी गायें उसके साथ में थी, तो उसने देखा कि ये आदमी अच्छा भला खड़ा हुआ है। उसको ये थोड़ी समझ में आया, साधु को देखने के लिए आंख चाहिए, ऐसे नहीं दिखता साधु वाधु कहीं, साधु देखने की आंख भी चाहिए, आंख नहीं हो तो कुछ नहीं दिखता। एक विदिशा में एक दसवीं पढ़ता था बेटा, तो वो एक दिन मेरे से बोला कि महाराज जी हमारे गुरु जी जो है बहुत क्रिटिसाइज करते मुनि महाराज जी की, एक दिन तो वो कह रहे थे कि अल्लाह तुम्हारे महाराज जी तो न कहूं से महाराज जी जैसे लगाता है, न ऋषि मुनि जैसे लगाता है, न तपस्वी लगाता है, कछु नहीं लगा दे। तो कह लो महाराज जी हमारी थोड़ी गलती हो गई, हमें थोड़ी गुस्सा सी आ गई, सो हमने खड़े होकर कह दिया, कह लो गुरु जी महाराज जी देखने की आंख चाहिए, बिना श्रद्धा की आंख के महाराज जी नहीं दिखते। कहना उनको थोड़ा बुरा लग गया, महाराज जी हमने गलती तो नहीं करी, हमने तुमने सभी कची तो कर लो अब कर। श्रद्धा की आंख चाहिए देखने के लिए, अच्छाइयां देखने के लिए श्रद्धा की आंख चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं दिखता, क्या दिखता वहां पर। ये भी हमारे जैसे खाते पीते हैं, लोगों से बात करते हैं, आते जाते हैं, सब कुछ हमारी जैसा करते हैं, और क्या एक्स्ट्रा करते हैं। मैं सकता ये हमारे जैसी दुकान नहीं चलाऊ, हमारे जैसी रोटी पानी नहीं बनाऊ, फुर्सत है। ऐसा भी विचार किया जा सकता है, और ऐसा भी विचार किया जा सकता है कि दिन भर राग द्वेष से बचने के लिए कितना उपाय करते हैं, और हम दिन भर राग द्वेष करने के लिए कितना उपाय करते हैं। एक दशा है जहां की राग द्वेष से बचने का उपाय है, और एक दशा है जहां राग द्वेष के उपाय जुटाए जाते हैं, दोनों में फर्क है। वितरागता जहां धर्म है, वहां तो व्यक्ति को ये श्रद्धा जागृत होगी कि राग द्वेष से मुक्त होना है। उस ग्वाले ने देखा कि अच्छा आदमी खड़ा हुआ है, पास में जाकर के कहा, देखो सब गायें हमारी चल रही हैं, देखत रहियो कहूं जा मैंने, और हम जा रहे रोटी वोटी खावे की लाने। छोड़ गया उनके जुम्मे, महाराज जी के जुम्मे, वो अपने ध्यान में लीन है, उनने ना सुना ना अनसुना किया, कुछ भी नहीं किया, वो चुपचाप खड़े हुए। अब वो जब खाना पीना खा करके लौटा तो देखा तो गायें क्या हुआ, वो एक एक करके जो है और जंगल की तरफ निकल गई, चरने के लिए निकल गई। अब वहां एक भी गाय नहीं, यहां वहां दौड़ धूप करके उसने देखा कहीं नहीं मिली। अब गुस्सा आना शुरू हुआ, कहां है हमारी गाय बताओ, मैं तो सोचता था तू बहुत सीधा साधा है लेकिन बड़ा छालाक निकला, कहां छुपा दी मेरी गाय। अब ऐसा बोलना शुरू कर दिया, कुछ भी बोला जा सकता है। यो यस्य न जानाति स तस्य निंदां करोति, जो जिसको नहीं जानता वो उसकी निंदा करता है। जब जब भी किसी की निंदा करने का मन बने तो उस समय याद कर लेना ये बात कि शायद मैं इसको जानता नहीं हूं, इसलिए तो निंदा कर रहा हूं। जो जानता है वो निंदा नहीं करता। तो गालियां देना शुरू कर दी और बहुत तीव्रता में आ गया कि तू तो बहुत चोर निकला, मैं तो तुझे सीधा साधा समझता था, तेरे जुम्मे सौंप गया था, एक भी गाय नहीं है और कहां चली गई सारी की सारी गायें। और जब बहुत देर हो गई तो जब उसको कुछ भी नहीं समझ में आया, कुछ भी नहीं सूझा, तो मेरी सुनता नहीं है तू, अब बहरा बन करके खड़ा है, अभी बताता हूं, तेरे कान खोलता हूं अभी, और दो ठो बड़े बड़े कीड़े लेकर के आ गया और हथौड़ा लेकर के आ गया, और एक कान में एक कीला ठोका और दूसरे में दो दूसरा कीला ठोकता चला गया। दोनों कीलों के मिलने से जब टन की आवाज आई तब अचानक उसके भीतर ये विचार जागा कि मैंने क्या किया, और आंख उठा के जब देखा तो चारों तरफ आंख में आंसू भरे सारी गायें वहीं पर आके खड़ी हुई थी। अरे इसमें छुपाई नहीं थी, अब क्या कर सकता है, भागा भागा गया, लोगों को लेकर के आया, कि चलो मेरे से तो अपराध बन गया है, मैं कहां जाऊं, कहां कोई जमीन फट जाती वहां धस जाऊं, क्या करूं, निकालो कैसे करें, कोई वैद्य जी को बुलाओ कैसे निकालेंगे। कहते उपचार किया गया, ड्रम में डाल करके और फिर ढीला करके उनको निकाला गया तो रक्त की धारा बह गई, लेकिन इसके बाद भी वो ध्यान में लीन है। उपचार होने के बाद जब ध्यान छूटा तो लोगों ने कहा कि क्या आपको एहसास नहीं हुआ, उन्हें एहसास तो हुआ, लेकिन विचार आया कि अगर अगर थोड़ा बहुत भी कुछ प्रतिकार करता हूं तो नए कर्म बंधेंगे और मुझे अब नए कर्म बांधने के लिए जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, पुराना हिसाब अगर चुकता होता है इतनी आसानी से तो वो जाने दो, कोई पुराना हिसाब पड़ा होगा, ये भी मैंने शायद किसी के साथ ऐसा कृत्य किया होगा इसलिए आज इसने मेरा हिसाब चुकता कर लिया। अब इसमें कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं थी, ऐसा शांत भाव से इतना हम सहन कर लेते हैं। जहां समत्व है वहां तप है, जहां जितनी क्षण के लिए हम समत्व में उतर जाते हैं, किसी ने गाली दी और हम चुप रह गए, किसी ने हमसे हमारे विपरीत बात कही और हम चुप रह गए, कोई